एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। तो श्रोताओं, आज हम गोता लगा रहे हैं एक ऐसी किताब में जो हमें समुद्र की गहराइयों में ले जाती है। सिर्फ भौगोलिक गहराइयों में नहीं, बल्कि उसके जीवन के एहसास में।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेचल कार्सन की एक बहुत ही खास किताब अंडर द सी विंड की। ये उनकी पहली किताब थी, 1941 में आई थी। उनकी जो मशहूर सी ट्रिलॉजी है ना,
हाँ हाँ, समुद्री त्रयी,
ये उसकी पहली कड़ी थी। और कमाल ये है कि आज भी इतने सालों बाद ये उतनी ही प्रासंगिक लगती है, शायद ज्यादा भी।
बिल्कुल, आज जब हम जलवायु परिवर्तन, समुद्री जीवन पर खतरे, इन सब बातों से जूझ रहे हैं, तब ये किताब जैसे एक ताजी हवा का झोंका है। ये हमें याद दिलाती है कि समुद्र वो सिर्फ एक नीला विस्तार नहीं है।
सही कहा, वो तो एक पूरी दुनिया है, अनगिनत जीवों का घर, उनके अपने संघर्ष, उनके अपनी कहानियां। और ये किताब ना विज्ञान को कहानी बना देती है, मतलब आप जुड़ जाते हैं उनसे।
हाँ, एक भावनात्मक जुड़ाव। ये सिर्फ तथ्य नहीं परोसती, बल्कि हमें उन जीवों की नजर से दुनिया देखने का एक मौका देती है।
और ये समझ आज बहुत जरूरी है, प्रकृति को सिर्फ इंसानी फायदे से ना देखना, बल्कि उसके अपने अस्तित्व को समझना।
तो इस अद्भुत नजरिए को लाने वाली लेखिका रेचल कार्सन, उनके बारे में कुछ बताइए, कौन थी वो?
रेचल कार्सन, मतलब 1907 से 1964 तक उनका जीवन रहा, वो एक अमेरिकी समुद्री जीव विज्ञानी थी, लेकिन सिर्फ वैज्ञानिक कहना काफी नहीं होगा। वो एक बेहतरीन लेखिका थी और एक बहुत ही दूरदर्शी पर्यावरणविद भी। ज्यादातर लोग उन्हें उनकी बाद की किताब साइलेंट स्प्रिंग से जानते हैं।
हाँ, जिसने वो कीटनाशकों वाला हंगामा खड़ा किया था।
जी हाँ, पेस्टिसाइड्स के खतरों पर उस किताब ने तो दुनिया बदल दी, लेकिन उनकी लेखनी की जो नींव है वो अंडर द सी विंड जैसी किताबों में ही पड़ी थी।
उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ पता है?
जी, उन्होंने जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से जूलॉजी में मास्टर्स किया था।
अच्छा।
और मजे की बात यह है कि करियर की शुरुआत उन्होंने एक सरकारी नौकरी से की।
अच्छा, कहाँ पर?
US ब्यूरो ऑफ फिशरीज में। बाद में यही फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस बना। वहां उनका काम था जटिल वैज्ञानिक जानकारी लेना और उसे आम लोगों के लिए आसान भाषा में लिखना, जैसे रेडियो स्क्रिप्ट या ब्रोशर वगैरह।
तो यहीं से उन्हें वो हुनर मिला होगा विज्ञान को कहानी की तरह कहने का।
बिल्कुल, मतलब उनके पास ज्ञान तो था ही, पर उसे शब्दों में पिरोने की, उसे महसूस कराने की कला भी आ गई। वो प्रकृति को सिर्फ रिसर्च का टॉपिक नहीं मानती थी। उनके मन में प्रकृति के लिए गहरा सम्मान था, एक तरह का आश्चर्य भाव। वो उसे एक बड़े समुदाय की तरह देखती थी, जिसका हर सदस्य, चाहे छोटा हो या बड़ा, महत्वपूर्ण है। और ये नजरिया उनकी इस पहली किताब में साफ झलकता है।
तो ये जो किताब है अंडर द सी विंड, इसे समुद्र की जीवनी कहते हैं। ये थोड़ा अजीब लगता है, मतलब समुद्र की जीवनी, कैसे, क्या है इसमें ऐसा?
हाँ, ये टाइटल थोड़ा अनोखा है, पर किताब भी अनोखी है। ये नॉन फिक्शन है, पर किसी उपन्यास की तरह पढ़ी जाती है। इसका लक्ष्य है पाठक को सीधे समुद्र के अंदर ले जाना, जैसे आप खुद वहां हो।
और ये होता कैसे?
कार्सन ये करती हैं तीन जीवों की कहानी के जरिए। एक है रैन, छोटा सा सैंडलिंग पक्षी जो तट पर रहता है।
ओके।
दूसरा है स्कॉम्बा, एक मैकरेल मछली जो खुले पानी में तैरती है। और तीसरी है एंगुला, एक ईल मछली जिसकी कहानी तो बस कमाल की है।
और इसमें हम इंसानों का कोई रोल नहीं है, कोई नरेटर या कहानी सुनाने वाला?
नहीं, यही तो खास बात है। कहानी पूरी तरह से इन जानवरों के पॉइंट ऑफ व्यू से है। हमें दुनिया उनकी इंद्रियों से महसूस होती है, जैसे ज्वार की लहर का खिंचाव कैसा लगता होगा, पानी के बहाव में किसी खास जगह की गंध, शिकारी की परछाई का डर, या फिर वो अंदरूनी खींच जो उन्हें हजारों मील दूर ले जाती है प्रवास पर। ये किताब दिमाग से ज्यादा दिल पर असर करती है, आश्चर्य जगाती है।
यानी ये जानकारी से ज्यादा एक अनुभव देने की कोशिश है। और किताब की बनावट कैसी है? क्या ये बस तीन अलग कहानियां हैं?
नहीं, ये जुड़ी हुई है। किताब तीन हिस्सों में बटी है और हर हिस्सा समुद्र के एक अलग इकोसिस्टम को दिखाता है।
अच्छा।
जैसे
पहला है
एज ऑफ द सी, यानी समुद्र का किनारा, वो जगह जहां जमीन और पानी मिलते हैं, ज्वार भाटा आता जाता है।
ठीक है।
दूसरा है द गल्स वे, गल पक्षी का रास्ता, ये हमें खुले समुद्र में ले जाता है, महाद्वीपीय शेल्फ के ऊपर। और तीसरा रिवर एंड सी, नदी और सागर, ये सबसे रहस्यमय है। ईल मछली के जीवन चक्र के जरिए ये गहरे समुद्र को मीठे पानी की नदियों से जोड़ता है।
वाह, तो ये तीन हिस्से मिलकर समुद्र की एक पूरी मतलब एक होलिस्टिक तस्वीर बनाते हैं कि कैसे ये अलग अलग दुनिया असल में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हैं।
हाँ बिल्कुल, कार्सन यही दिखाती हैं कैसे धाराएं, भोजन की तलाश और जीवों के लंबे सफर जिन्हें माइग्रेशन कहते हैं, इन सब हिस्सों को एक धागे में पिरोते हैं। और यही किताब के मुख्य विषय भी है, ये लंबा सफर, शिकारी और शिकार का रिश्ता।
जिसे वो क्रूरता नहीं कहती?
नहीं, वो इसे प्रकृति का संतुलन कहती है। फिर जीवन चक्र है, जन्म, विकास, प्रजनन, मृत्यु और प्रकृति की अपनी लय, अपनी सहज प्रवृत्ति जो मौसम और ज्वार की तरह सब कुछ चलाती है।
चलिए इन हिस्सों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। पहला भाग एज ऑफ द सी, किनारा। यहाँ क्या होता है? वो रैन नाम का पक्षी
रेत से खेलती है। कहानी रैन एक छोटे से सैंडलिंग पक्षी की है जो अपने झुंड के साथ अटलांटिक तट के सहारे दक्षिण की ओर उड़ रहा है।
ये उनका वो मौसमी प्रवास है, माइग्रेशन।
जी हाँ, और हम दुनिया को जैसे रैन की आंखों से देखते हैं। कार्सन का वर्णन इतना जीवंत है, ज्वार उतरता है तो रेत में दबे कीड़े मकोड़े, छोटे घोंगे बाहर आ जाते हैं।
उनका खाना?
बिल्कुल, रैन और उसके साथी तेजी से अपनी पतली चोंच से उन्हें चुनते हैं। वहाँ जीवन की एक खास लय है, तेजी से खाओ, थोड़ा आराम करो, पर हमेशा चौकन्ने रहो।
चौकन्ने, खतरा भी होता है?
अरे बिल्कुल, कई तरह के, वो भूत केकड़े होते हैं ना, गोस्ट क्रैब्स, जो अचानक रेत से निकलते हैं।
हाँ हाँ।
दूसरे सैंडलिंग भी हैं जो खाना छीनने की कोशिश करते हैं, पर सबसे बड़ा खतरा है पेरेग्रिन बाज का, वो आसमान से बिजली की तरह झपटता है, ये डर हमेशा बना रहता है।
तो ये सिर्फ खाने और बचने की कहानी नहीं है?
नहीं, ये एक बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा है। रेन का सफर देखिए, आर्कटिक से दक्षिण अमेरिका तक, ये दिखाता है कि कितनी दूर दूर की जगहें जुड़ी हुई हैं।
और प्रकृति की उदासीनता भी, आपने तूफान का जिक्र किया था?
हाँ, एक भयंकर तूफान आता है, पक्षी क्या करते हैं, बस अपनी अंदरूनी हिम्मत और सहज ज्ञान के भरोसे उसे झेलते हैं। प्रकृति किसी की परवाह नहीं करती, वो बस है। और फिर जब वसंत आता है तो रेन के अंदर उत्तर लौटने की जबरदस्त इच्छा जागती है और वो फिर उड़ चलता है हजारों मील, एक चक्र पूरा हो जाता है।
कमाल है, किनारे से अब चलते हैं खुले समुद्र में। दूसरा भाग द गर्ल्स वे। यहाँ माहौल कैसा है? और स्कॉम्बर, वो मैक्रेल मछली?
हाँ, अब हम तट से दूर खुले पानी में हैं। महाद्वीपीय शेल्फ के ऊपर का विशाल नीला विस्तार, पिलाजिक जोन कहते हैं इसे। यहाँ की हीरोइन है स्कॉम्बर, एक अटलांटिक मैक्रेल। कहानी शुरू होती है वसंत में, जब लाखों मैक्रेल एक साथ अंडे देती हैं।
लाखों अंडे, बापरे। और कार्सन एक मछली की दुनिया कैसे दिखाती हैं? उनकी इंद्रियां, वो तो हमसे बहुत अलग होंगी।
यही तो कार्सन का जादू है, वो कल्पना करती हैं विज्ञान के आधार पर कि मछली के लिए पानी की अलग अलग धाराओं का स्वाद कैसा होगा, दबाव में बदलाव कैसे महसूस होता होगा, दूर से आते शिकारी या शिकार की वाइब्रेशन को वो कैसे पकड़ लेती होगी। हम स्कॉम्बर को एक नन्हे लार्वा से बढ़कर एक तेज शिकारी बनते देखते हैं।
तो यहाँ का मुख्य खेल भोजन और शिकारी का है, जिसे समुद्र का चारागाह कहा था।
बिल्कुल, एक पूरी फूड चेन है यहाँ। पानी में तैरते नन्हे पौधे हैं, फाइटोप्लैंक्टन, उन्हें खाते हैं छोटे जीव, जूप्लैंक्टन, फिर उन्हें खाती हैं छोटी मछलियां जैसे हेरिंग और मैक्रल, यानी स्कॉम्बर। तो स्कॉम्बर खुद शिकारी है, पर शिकार भी बनती है।
किसका शिकार?
टूना, डॉल्फिन, समुद्री पक्षी सब उसे खाते हैं। और हाँ, हम इंसान भी, हमारे बड़े जहाज और जाल लाखों की तादाद में मैकरल पकड़ते हैं।
ये तो जीवन और मृत्यु का एक बहुत बड़ा पैमाना दिखाता है। लाखों अंडों में से कुछ ही बचते हैं।
सही पकड़ा, ये दिखाता है कि समुद्र में शायद एक अकेले जीव की जान उतनी अहम नहीं जितनी पूरी प्रजाति का बने रहना। स्कॉम्बर की जिंदगी पूरी तरह इंस्टिंक्ट पर चलती है, खाना ढूंढो, शिकारी से बचो, नस्ल आगे बढ़ाओ, ये एक बड़ा विशाल चक्र है, काफी हद तक इम्पर्सनल।
और अब तीसरा सबसे रहस्यमयी हिस्सा, रिवर एंड सी, ईल मछली एंगुइला की कहानी। ये इतनी खास क्यों है?
हाँ, क्योंकि ये कहानी हमें ऐसी जगहों पर ले जाती है जहाँ पहुँचना मुश्किल है, गहरे समुद्र से लेकर मीठे पानी की नदियों तक, और एक ऐसे जीव के बारे में बताती है जिसके जीवन के कई रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। ये कहानी है एंगुइला की, अमेरिकी ईल।
इसकी शुरुआत कहाँ से होती है?
बहुत ही नाटकीय ढंग से, अटलांटिक महासागर के बीचों बीच सैरगासो सागर की अंधेरी बेहद गहरे पानी में, यहाँ बहुत दबाव होता है। ये खास जगह है, यहाँ उत्तरी अमेरिका और यूरोप दोनों जगह से वयस्क ईल हजारों मील तैरकर पहुंचती हैं।
हजारों मील
क्यों? अंदरूनी प्राचीन पुकार के कारण, प्रजनन के लिए। यहाँ वो अंडे देती हैं और फिर मर जाती हैं, उनका जीवन यहीं समाप्त होता है।
क्या कह रहे हैं, मतलब इतनी लंबी यात्रा सिर्फ मरने के लिए? तो कहानी आगे कैसे बढ़ती है?
कहानी उनके बच्चों की है। फोकस एक नन्हे पत्ते जैसे पारदर्शी लार्वा पर जाता है, लेप्टोसेफेलस कहते हैं उसे। कार्सन उसे नाम देती हैं एंग्यूला। ये लार्वा पूरी तरह बेबस होता है। गल्फ स्ट्रीम की जो तेज धारा है ना,
हाँ सुना है,
वो उसे लगभग एक साल तक बहाकर उत्तरी अमेरिकी तट की ओर ले जाती है।
एक साल तक सिर्फ धाराओं के भरोसे?
तट पर पहुंचकर क्या होता है, तट के पास पहुंचकर वो लार्वा बदलता है, ग्लास ईल बनता है, मतलब थोड़ा दिखने लगता है। फिर जब वो नदी के मुहाने में पहुंचता है, जहां नदी समुद्र से मिलती है, तो उसका रंग गहरा होने लगता है। अब वो एल्वर कहलाता है, और अब उसमें एक नई इच्छा जागती है, मीठे पानी की तरफ जाने की।
अच्छा,
वो नदी में ऊपर की तरफ तैरना शुरू करती है और आखिरकार किसी तालाब या शांत पानी में अपना घर बना लेती है। वहां वो कई साल रहती है, शायद 10-15 साल। रात में शिकार करती है।
और फिर क्या वो वहीं रहती है?
नहीं, यही तो रहस्य और गहराता है। एक दशक या उससे ज्यादा समय बाद अचानक एक और अंदरूनी बदलाव आता है। वही प्राचीन पुकार उसे फिर खींचती है। वो खाना बंद कर देती है। उसका शरीर गहरे समुद्र के अंधेरे और दबाव को सहने के लिए तैयार होने लगता है।
ओह,
और फिर वो उसी सार्गासो सागर की ओर अपनी अंतिम एकतरफा यात्रा शुरू करती है, प्रजनन करने और मरने के लिए, ठीक वैसे ही जैसे उसके माँ बाप ने किया था।
ये तो अविश्वसनीय है, वाकई महाकाव्य। ये तो समुद्र, तट, नदियां सबको एक साथ जोड़ देती है।
बिल्कुल, यही दिखाती है कि पानी की पूरी दुनिया कैसे एक दूसरे से जुड़ी है। और ये सहज प्रवृत्ति की ताकत देखिए, बिना किसी नक्शे, बिना किसी ट्रेनिंग के पीढ़ी दर पीढ़ी ये जीव हजारों मील का सफर तय करते हैं। ये हमें प्रकृति की विशालता और जटिलता के सामने बहुत छोटा महसूस कराती है।
इस पूरी किताब से, मतलब इन कहानियों से, कौन से मुख्य संदेश हैं जो दिमाग में रह जाते हैं?
मेरे ख्याल से सबसे पहला और सबसे जरूरी है जीवन का अंतर संबंध, इंटरकनेक्टेडनेस। कार्सन बार बार हर कहानी में यही दिखाती हैं कि समुद्र में कुछ भी अलग नहीं है। वो आर्कटिक का पक्षी रेन, अटलांटिक की मछली स्कॉम्बा और सरगासो सागर से नदी तक जाने वाली ईल एंग्यूला, ये सब एक बड़े वेब का हिस्सा हैं। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि एक जगह का प्रदूषण दूर तक असर डालता है, कुछ वैसा ही।
हाँ, ये कनेक्शन साफ दिखता है। और दूसरा बड़ा आइडिया जो मुझे बहुत प्रभावित कर गया, वो है अमानवीय दृष्टिकोण और सहानुभूति, नॉन ह्यूमन पर्सपेक्टिव एंड एम्पैथी। मतलब कार्सन जानवरों को इंसानी चश्मे से नहीं देखती।
सही बात है।
वो उनकी बायोलॉजी, उनकी इंद्रियों को समझकर कल्पना करती हैं कि उनकी दुनिया कैसी होगी। इससे एक सच्ची हमदर्दी पैदा होती है। हम अक्सर अपने आसपास के जानवरों को बस या तो प्यारा समझते हैं या न्यूसेंस। ये किताब उनके नजरिए से सोचने को मजबूर करती है।
बिल्कुल। और तीसरा अहम पॉइंट है सहज प्रवृत्ति और प्राकृतिक लय, प्राइमेसी ऑफ इंस्टिंक्ट एंड नेचुरल रिदम्स। इन जीवों की जिंदगी तर्क या चॉइस से नहीं चलती। वो हजारों साल पुरानी इंस्टिंक्ट्स और प्रकृति की लय, मौसम, ज्वार भाटा, चांद, इनसे बंधी है। माइग्रेशन या प्रजनन उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं, एक अंदरूनी मजबूरी है। जैसे हमारे यहाँ मानसून का चक्र है, वो सिर्फ मौसम नहीं, वो हमारी खेती, हमारे त्योहार, हमारी पूरी जिंदगी की लय तय करता है। ये भी तो एक प्राकृतिक रिदम है।
और वो जीवन मृत्यु वाला चक्र, वो तो बड़ा कठोर लगता है।
हाँ, चौथा संदेश है जीवन मृत्यु का सतत चक्र, परपेचुअल साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। कार्सन इसे त्रासदी नहीं दिखाती। स्कॉम्बर के लाखों अंडों का नष्ट होना दुखद लग सकता है, पर वही तो बाकी जीवों का भोजन बनता है, इकोसिस्टम को चलाता है। ईल का मरना अगली पीढ़ी को जन्म देता है। प्रकृति एक बड़ी इम्पर्सनल सिस्टम है, जहां मौत भी जीवन का हिस्सा है, उसे आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। हमारे दर्शन में भी तो जीवन चक्र की बात है, जो इसे एक कंटिन्यूअस प्रोसेस मानता है।
लगी भाषा, विज्ञान और कविता का ऐसा संगम।
हाँ, पांचवा संदेश
गीतात्मक विज्ञान यानी लिरिकल साइंस। कार्सन ये साबित करती हैं कि विज्ञान और सुंदर भाषा दुश्मन नहीं, दोस्त हो सकते हैं। बल्कि जब आप किसी चीज़ को बहुत गहराई से समझते हैं, तभी आप उसकी सुंदरता को शब्दों में ढाल पाते हैं। जैसे हमारे पुराने आयुर्वेद या ज्योतिष के ग्रंथों में भी देखिए, ज्ञान के साथ साथ एक काव्यात्मकता होती है।
यकीनन इस किताब में कई पंक्तियां या विचार ऐसे होंगे जो याद रह जाते हैं। कुछ खास विचारों को अगर हम दोहराना चाहें।
हाँ, कई हैं। एक बड़ा विचार ये है कि प्रकृति का असली ज्ञान सिर्फ किताबों या लैब में नहीं, बल्कि उसे अनुभव करने में है, महसूस करने में है। कार्सन के लेखन से यही लगता है कि समुद्र किनारे खड़े होकर, लहरों को सुनकर, हवा को महसूस करके हम कुछ ऐसा जान जाते हैं जो शायद हमेशा से है। ये हमें समय के बड़े बहाव से जोड़ता है।
और वो फूड चेन वाली बात, हर जीव एक कड़ी है। जैसे स्कैम्बर की कहानी, वो नन्हे प्लैंकटन से शुरू हुई चेन का हिस्सा है और शायद किसी शार्क या हमारे खाने की मेज पर खत्म होती है। ये दिखाता है कि कैसे ऊर्जा बहती है और हर कोई महत्वपूर्ण है।
तीसरा विचार ईल की अंतिम यात्रा से जुड़ा है। जब प्रकृति की गहरी पुकार आती है तो व्यक्तिगत जीवन की यादें पीछे छूट जाती हैं। वो ईल जब सरगासो सागर लौटती है तो मीठे पानी के तालाब की जिंदगी भूल जाती है, सिर्फ वो प्राचीन खिंचाव रह जाता है। ये दिखाता है कि इंस्टिंक्ट कितनी शक्तिशाली है।
और एक विचार जो हमें अपनी जगह दिखाता है, समुद्र इतने राज छुपाए हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं। कार्सन पूछती भी हैं, कौन है जो समुद्र को पूरी तरह जान सका है। ये हमें विनम्र बनाता है और हमेशा सीखते रहने को प्रेरित करता है।
ये विचार सिर्फ जानकारी नहीं है, ये दुनिया देखने का नजरिया बदलते हैं।
तो इन गहरे विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है, इनसे हम क्या सीख सकते हैं प्रैक्टिकली?
सबसे सीधी बात तो है पारिस्थितिक सहानुभूति बढ़ाना। इस किताब को पढ़ने या सुनने के बाद शायद हम अगली बार प्लास्टिक फेंकने से पहले या बेवजह किसी कीड़े को मारने से पहले एक सेकंड सोचें। जानवरों को सिर्फ चीजें ना समझकर उन्हें पृथ्वी के साथी मानें, इससे अपने आप पर्यावरण बचाने की सोच आएगी।
दूसरा, प्रकृति को ज्यादा ध्यान से देखना। कार्सन हमें सिखाती है कि कैसे देखें। अगली बार बालकनी में चिड़िया दिखे या पार्क में कोई पेड़, तो सिर्फ देखकर आगे न बढ़ें, सोचें ये कहां से आई होगी, इसका जीवन कैसा है, मौसम बदलने पर इस पर क्या असर होता होगा, हमारे आसपास की दुनिया अचानक ज्यादा दिलचस्प लगने लगेगी।
तीसरा, विनम्रता और सही नजरिया पाना। जब हम प्रकृति की विशालता, उसकी शक्ति, उसके लाखों साल पुराने चक्रों को देखते हैं तो अपनी रोज की परेशानियां थोड़ी कम बड़ी लगती हैं। ये समझना कि हम इस बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा है, हमें फालतू के अहंकार से बचाता है, पर्सपेक्टिव मिलता है।
और हाँ, कहानी कहने की ताकत को समझना। ये किताब एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे जटिल वैज्ञानिक बातों को भी कहानी की तरह कहकर ज्यादा असरदार और यादगार बनाया जा सकता है। ये सिर्फ लेखकों के लिए नहीं, हम सबके लिए एक सबक है, शिक्षकों, पेरेंट्स, सबके लिए।
बिल्कुल, ये किताब दुनिया देखने का हमारा नजरिया बदल सकती है, अगर हम इसे बदलने दें।
इस पूरी चर्चा के बाद अगर एक चीज चुननी हो जो सबसे ज्यादा असरदार लगी या चौंकाया जिसने, तो वो क्या होगी?
मेरे लिए तो जैसा मैंने कहा, कार्सन का लेखन ही है। वो जादूगरी, कैसे वो विज्ञान को इतनी गहरी भावना और कविता से मिला देती हैं, वो कमाल है। और वो जुड़ाव का एहसास कि हजारों मील दूर का जीव भी किसी न किसी तरह मुझसे जुड़ा है। ये सोचना कि मेरा यहां शहर में किया कोई काम शायद समुद्र के किसी कोने में असर डाल सकता है, ये एक जिम्मेदारी का एहसास कराता है।
और मेरे लिए शायद सबसे चौंकाने वाली बात ये एहसास था कि हमारी इस इंसानी दुनिया के हंगामे से दूर प्रकृति में अपनी ही कितनी खामोश लेकिन भव्य महाकाव्यात्मक कहानियां चल रही हैं। रैन का तूफान से जूझना, स्कॉम्बर का शिकारी से बचना, एंग्विला की वो अविश्वसनीय यात्रा, ये सब अपने आप में एपिक हैं। ये किताब इंसान को सेंटर से हटाकर उसे जीवन के इस विराट ताने बाने का बस एक धागा महसूस कराती है। और सच कहूं तो ये एहसास काफी सुकून देने वाला भी है।
सही कहा, ये किताब सिर्फ जानकारी नहीं देती, ये महसूस करना सिखाती है और सवाल छोड़ जाती है, क्या हम प्रकृति की इन दूसरी कहानियों को सुनने के लिए तैयार हैं?
मिलेंगे अगले अंग में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।